चलो बताओ क्या मिलेगा मुझे? ठेंगा मिलेगा, इनाया गुस्से में भड़क उठी। मुझे नहीं देखना कुछ भी। इनाया जैसे ही जाने लगी, कायरव ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक दिया। मजाक कर रहा था, चलो दिखाता हूँ तुम्हें मेरा कौन सा राज छुपा है इस रूम में। इनाया ने तिरछी निगाहों से उसे घूरा। दिल तो कर रहा था कि चली जाए यहाँ से, लेकिन अंदर क्या है ये देखना था उसे, इसलिए नाक मुंह से कोरते हुए रुक गई। कायरव ने डोर खोला। इनाया ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी आंखों की पुतलियां हैरानी से फैल गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। ये कमरा उस घर के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था। स्टाइलिश कम और सोलफुल ज्यादा लग रहा था। लग्जरी से ज्यादा यहाँ इमोशंस फील हो रहे थे। इनाया की हैरानी भरी नजरें धीरे धीरे कमरे को स्कैन करने लगी। दीवारों पर सॉफ्ट ग्रे अकोस्टिक पैनल्स लगे थे जो साउंड को अब्सॉर्ब करके कमरे को एक अलग ही शांत वाइब दे रहे थे। एक तरफ बड़ा सा ब्लैक पियानो रखा था, ग्लॉसी सर्फिस वाला, जो कमरे की वार्म लाइट्स में हल्का हल्का चमक रहा था। उसके पास एक स्टैंड पर अकोस्टिक गिटार और दीवार पर टिके हुए दो और, एक इलेक्ट्रिक और एक सेमी हॉलो। एक कॉर्नर में ड्रम सेट डिम स्पॉटलाइट में रखा हुआ, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा था। नीचे सॉफ्ट बेज कार्पेट था। कमरे के बीचों बीच एक छोटा राउंड सोफा था, उसके सामने माइक स्टैंड और एक स्लीक ऑडियो सिस्टम लगा था। इनाया ये सब देखकर शॉक्ड थी। ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने। ये क्या है, किसका है ये सब? मेरा है, कायरव ने गौर से उसके एक्सप्रेशन देखते हुए जवाब दिया। इनाया को झटका सा लगा। वो आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। तुम्हारा? क्या तुम्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने का शौक है? नहीं, ये सब मेरे हैं, और सिर्फ कलेक्शन के लिए नहीं है, मैं यूज करता था इन्हें। तुम गाते थे और ये सब बजाते भी थे? इनाया की आंखें बाहर आने को हो गई, जबकि कायरव अब भी बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। सिंगिंग मेरा पैशन था। सच में? पर तुमने तो मुझे पहले इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जरूरत नहीं पड़ी। क्या मतलब? इनाया चौंक गई। मतलब ये कि जरूरत नहीं पड़ी तुम्हें इस बारे में बताने की। कभी मौका भी नहीं मिला और याद भी नहीं रहा। काफी वक्त हो गया मुझे इस रूम में आए हुए भी। क्यों? तुमने तो कहा कि सिंगिंग तुम्हारा पैशन है और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम्हें अपने बारे में इतनी इम्पोर्टेंट बात बताने का मौका नहीं मिला, या तुमने जानबूझकर मुझसे ये बात छुपाई? इनाया दोनों हाथ कमर पर रखे उसके सामने खड़ी जवाब मांग रही थी। मुझसे तुमसे ये बात छुपाकर क्या मिलेगा? क्यों छुपाऊंगा मैं तुमसे ये बात? इनाया तुनकते हुए बोली। मुझे क्या पता, तुमने नहीं बताया था तो वजह तो तुम ही जानते होगे। मैंने इंटेंशनली तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया, बस मुझे बताना याद नहीं रहा, क्योंकि अब मैं सिंगिंग नहीं करता। बताया तो मैंने तुम्हें, आज इस रूम में भी काफी टाइम बाद आया हूँ। कायरव का जवाब सुनकर इनाया तुमरी शांत हुई, लेकिन सवाल अब भी बहुत थे। सिंगिंग तुम्हारा पैशन है ना, फिर तुमने इस रूम में आना क्यों छोड़ दिया? सिंगिंग मेरा पैशन है नहीं, था, जो स्कूल टाइम तक ही रहा। सिंगिंग में इंटरेस्ट मुझे शुरू से था। स्कूल टाइम में म्यूजिक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का पार्ट था और सबको उसमें पार्टिसिपेट लेना पड़ता था। उसी टाइम मैंने सिंगिंग सीखी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सीखे, काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट भी लिया और मेडल्स अवार्ड्स भी जीते। वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था। स्टडीज में मैं अच्छा था, माइंड शार्प था और मेमोरी भी ऐसी कि एक बार पढ़कर सब याद हो जाता था। गेम्स और म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लेता रहता था। दैट वॉज गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ। लेकिन ये सब बस तभी तक रहा, स्कूल खत्म और उसके साथ सारे शौक भी खत्म। लेकिन तुमने तो कहा कि सिंगिंग तुम्हारा पैशन था और तुमने कॉम्पिटिशन्स भी जीते, मतलब अच्छे सिंगर रहे होगे। फिर तुमने इस फील्ड में अपना करियर बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? चलो पैशन को प्रोफेशन नहीं भी बनाया, लेकिन पैशन की तरह फॉलो तो कर सकते थे। लेकिन तुमने तो कहा कि तुम अब सिंगिंग करते ही नहीं, ऐसा क्यों? कायरव के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभरे और दिल कड़वाहट से भर गया। आंखों में शिकायत, बेबसी, मजबूरी जैसे कई भाव उभरे, लेकिन लब खामोशी रहे। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम मुझे नहीं बता सकते? कायरव मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में अजीब सा दर्द था। तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? तुम्हें तो हक है मेरे बारे में सब जानने का, तो बताओ। मुझे जानना है, इसके पीछे भी कोई कहानी है ना? कहानी है, आओ बैठो, सुनाता हूँ तुम्हें। कायरव ने उसका हाथ थामा और सोफे पर बिठाते हुए खुद उसके सामने बैठ गया। इनाया आंखों में ढेरों सवाल लिए जवाब के इंतजार में उसे देखने लगी। तुम्हें पता है जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे तुम मिली थी, उस दिन मैं वहाँ क्या कर रहा था? मुझे कैसे पता होगा, तब तो मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी। उस दिन मैं अपना घर छोड़कर निकला था, बहुत गुस्से में था। कहाँ जा रहा था, क्या करने वाला था, कुछ नहीं जानता था। बस गुस्से में बाइक दौड़ा रहा था और उसी में वो एक्सीडेंट हो गया था, कायरव ने खुलासा किया। इनाया स्तब्ध रह गई। तक तुम अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे थे? क्योंकि मुझे सिंगर बनना था और मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं वो करूं जो वो चाहते हैं, सिंगिंग छोड़ दूं और फैमिली बिजनेस संभालूं, जो मुझे मंजूर नहीं था। लेकिन तुम बात तो करते ना, ऐसे घर छोड़कर कौन जाता है? तुम्हें लगता है कि मैंने उनसे बात नहीं की होगी, उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की होगी? कायरव के सवाल पर इनाया चुप्पी साध गई। इतने टाइम में उसके पेरेंट्स को कुछ कुछ तो वो भी समझने लगी थी, और इतना तो जानती थी कि उन्हें कुछ समझाना नामुमकिन था। कायरव ने ठंडी आह भरी और उस दिन का पूरा किस्सा उसे कह सुनाया।
इनाया सुन सी बैठी बस सुनती रही। अब उसे समझ आ रहा था कि कायरव ने उस दिन घर छोड़ने का फैसला क्यों लिया होगा, इतने गुस्से में क्यों था वो। अब उसे सब समझ आ रहा था, लेकिन साथ ही मन में कई सवाल भी उठने लगे थे। अब समझ आया तुम्हें कि उस दिन मैंने अपना घर छोड़ने का फैसला क्यों लिया था? मैं तो उस दिन घर के साथ शायद ये दुनिया भी छोड़ जाता, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मैं समझ गई कि उस टाइम तुम्हारे पास घर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। अगर तुम उस घर में रहते तो कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस करना इम्पॉसिबल है। उस दिन जो हुआ उसके बाद तुम्हारा गुस्सा भी जायज था, लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आई। कायरव ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। कायरव, तुमने सिंगिंग क्यों छोड़ दी? तुमने तो अपनी दादी से कहा था कि घर छोड़ दोगे पर सिंगिंग नहीं छोड़ोगे, और तुमने वाकई घर छोड़ भी दिया था। फिर सिंगिंग क्यों छोड़ दी? तुम्हें तो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, फिर अब ये बिजनेस क्यों संभाल रहे हो? कायरव मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में दर्द भी था और बेबसी भी। मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तुम्हारी मजबूरी थी कि ये जानते हुए कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी आई की मौत के जिम्मेदार हैं, तुम उनके साथ रहती थी। और मेरी मजबूरी थी जिस काम से दूर भागने के लिए मैंने अपना घर तक छोड़ने का फैसला कर लिया था, आज वही काम मेरी पहचान है। कोई नहीं जानता उस कायरव को जो म्यूजिक कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीतता था। सब जानते हैं तो इस कायरव रायचंद को, जिसने बिजनेस वर्ल्ड में बहुत कम वक्त में वो मुकाम हासिल किया, जिसे सपने देखते देखते लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन तुम्हारी वो मजबूरी क्या थी? मेरी मजबूरी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इनाया कंफ्यूज निगाहों से उसे देखने लगी। दादी, दादी वो वजह है जिनके लिए मैंने अपना सपना छोड़ा और उस रास्ते पर चलने लगा जिस तरफ मैं कभी देखना भी नहीं चाहता था। दादी, लेकिन कैसे? इनाया चौंक गई। कायरव के जहन में कुछ पुरानी बातें घूमने लगी।
मैं घर से तो निकल गया था और दादी के अलावा किसी को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ा था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। लेकिन मैं आगे के बारे में कुछ सोचता या करता उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम मुझे लगा था कि मैं उस सुनसान सड़क पर ही मर जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पता नहीं कहां से तुम आ गई और एम्बुलेंस को बुला लिया। बेहोश होने से पहले आखिरी बार मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था। जब होश आया, खुद को हॉस्पिटल में मशीनों से घिरा पाया। उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक नर्स थी। उनसे मुझे पता चला कि मुझे 3 दिन बाद होश आया है। मुझे इमरजेंसी में एडमिट किया गया। क्रिटिकल केस था और ब्लड लॉस भी ज्यादा हुआ था, बचना लगभग इम्पॉसिबल था। ऑपरेशन के 3 दिन बाद मुझे होश आया था और तब तक मेरी फैमिली तक खबर पहुंच चुकी थी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने नर्स से पूछा भी था कि क्या मेरे साथ कोई लड़की भी आई थी, तो उन्होंने मना कर दिया। मेरे होश में आने की खबर उन्होंने डॉक्टर के साथ साथ मेरी फैमिली को भी दी। कुछ देर बाद डैड आए मुझसे मिलने, लेकिन मैं उनसे गुस्सा था इसलिए मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। डैड भी गुस्से में थे। टू बी कंटिन्यूड।